नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव युगऋषि वेदोमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं
जी।
शीर्षक है कल्प साधना का उद्देश्य और स्वरूप। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कल्प साधना है क्या आखिर, और इसका लक्ष्य क्या है। अगर संक्षेप में कहें तो ये शायद स्वयं के भीतरी रूपांतरण की एक प्रक्रिया है।
हाँ बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव इसे बहुत स्पष्ट रूप से हमारे जीवन के जो कष्ट है ना,
हाँ,
जैसे रोग है, शोक है, कोई हानि विपत्ति, इनसे जोड़ते हैं।
अच्छा।
उनका मानना है कि इन सब का जो मूल कारण है वो हमारे ही संचित पाप कर्म है,
मतलब पिछले कर्मों का फल।
अच्छा।
और साथ ही हमारा अपना बिगड़ा हुआ चिंतन और दुष्ट आचरण। तो मतलब समस्या बाहर नहीं, अंदर ही है।
बिल्कुल। और यहीं से फिर वो आत्म परिष्कार और कल्प साधना की जरूरत शुरू होती है।
तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इस उद्बोधन में ये बात सामने आती है कि पाप कर्म जो हैं, वो पहले दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी आदतों के रूप में अंकुरित होते हैं, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं।
जी।
इससे बचने का एक मार्ग बताया गया है, प्रायश्चित।
हाँ, प्रायश्चित पर यह सिर्फ अफसोस करना नहीं है जैसा कई लोग समझते हैं।
अच्छा।
जी नहीं, ये तो आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का एक ठोस जरिया है, मतलब खुद को शुद्ध करना, बेहतर बनाना।
तो इसके कुछ अंग भी होंगे, मतलब कैसे किया जाए ये प्रायश्चित?
हाँ, ये जानना बहुत रोचक है। पूज्य गुरुदेव ने प्रायश्चित के तीन महत्वपूर्ण पक्ष बताए हैं।
तीन पक्ष?
जी। पहला है तितिक्षा, यानी व्रत उपवास जैसी चीजों से कष्ट सहने का अभ्यास करना।
तितिक्षा।
दूसरा है अपने भीतर जो जमे हुए कुसंस्कार है ना, बुरी आदतें, उनको उखाड़ फेंकना
जड़ से।
हाँ, जड़ से, और उनकी जगह शालीनता स्थापित करने का आंतरिक पुरुषार्थ, मतलब अंदर से कोशिश करना।
ठीक है।
और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्षतिपूर्ति, मतलब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पुण्य परमार्थ के कार्य करना।
अच्छा, पुण्य परमार्थ।
हाँ, कहा गया है कि जब ये तीनों मिलते हैं, तितिक्षा, आंतरिक पुरुषार्थ और क्षतिपूर्ति, तभी प्रायश्चित पूरा होता है, एक भी रह गया तो अधूरा है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ।
और इसी शुद्धि की प्रक्रिया में मुझे लगता है आहार शुद्धि पर बहुत जोर दिया गया है।
बिल्कुल, उसे तो साधना का पहला चरण कहा है।
पहला चरण।
हाँ, और इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने भीष्म पितामह का एक बहुत सटीक उदाहरण दिया है।
हाँ, वो वाला उदाहरण मैंने भी सुना है, द्रौपदी वाला।
जी वही। जब वो शरशैया पर थे तो द्रौपदी ने पूछा कि भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, तब आपने कौरवों को रोका क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं? तो भीष्म ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तब मेरे शरीर में कुधान्य मतलब दूषित अन्न से बना हुआ रक्त बह रहा था, और उस रक्त ने मेरी बुद्धि को भी वैसा ही मतलब मलिन कर दिया था। अब जब बाणों से वो रक्त निकल गया है तो बुद्धि निर्मल हुई है और मैं सही सोच पा रहा हूँ, सही सलाह दे पा रहा हूँ।
कमाल है, मतलब अन्न का इतना गहरा असर।
बहुत गहरा। इसीलिए उद्बोधन में कहा गया है कि अन्न को केवल पेट भरने या स्वाद की वस्तु नहीं मानना चाहिए, वो तो ब्रह्म तुल्य है, प्राण तुल्य है।
ब्रह्म और प्राण तुल्य।
जी, आहार शुद्धि का सीधा असर मन पर पड़ता है। सात्विक, सुपाच्य, कम मात्रा में लिया गया भोजन, जैसे भाप में पका भोजन या हविष्यरण।
हविष्यरण, ये क्या होता है?
ये साधना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बहुत सात्विक भोजन होता है, तो ऐसा भोजन मन को शांत और स्थिर बनाता है,
और वो एकाग्रता के लिए जरूरी है।
बिल्कुल, जो साधना के लिए बहुत जरूरी है, और ये सीधा इंद्रिय संयम से भी जुड़ता है।
हाँ।
और इसके विपरीत अगर देखें तो तामसिक भोजन या अनीति से कमाया हुआ अन्न, वो मन में विकार पैदा करता है।
समझ गया। तो फिर इस कल्प साधना के मुख्य आधार क्या बताए गए हैं, मतलब किन स्तंभों पर ये टिकी है?
पूज्य गुरुदेव ने मुख्य रूप से तीन बातें बताई हैं।
हाँ।
एक है एकांत सेवन, मतलब कुछ समय अकेले में बिताना।
ठीक है।
दूसरा है आहार संयम, यानी खान पान पर नियंत्रण, जो अभी हमने बात की।
जी।
और तीसरा है निर्धारित चिंतन, मतलब किसी एक चुने हुए विषय पर गहराई से मनन करना, सोचना।
एकांत, आहार और चिंतन।
जी। और साथ में ये भी साफ किया गया है कि ये कोई ऐसी सतही क्रिया नहीं है, इसके लिए सही मार्गदर्शन और एक पवित्र वातावरण,
जैसे शांति कुंज का उल्लेख है शायद।
हाँ, जैसे शांति कुंज का उल्लेख है, ये बहुत सहायक होते हैं। इसमें गहरा अनुशासन और गंभीरता चाहिए होती है। साधक को अपने दोष, अपनी कमजोरियां मार्गदर्शक को ईमानदारी से बतानी होती हैं, तभी तो सुधार के सही उपाय तय हो पाते हैं।
ये तो पूरी तरह से गंभीर प्रक्रिया है। और अगर हम कल्प शब्द को ही देखें, इसका अर्थ क्या है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल्प का अर्थ ही है कायापलट।
कायापलट मतलब पूरी तरह बदल जाना।
बिल्कुल, पुरानी जो स्थिति है, जो कमजोरियां हैं, उनको पूरी तरह बदलकर उत्कृष्टता को स्थापित करना।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव ने साधना के तीन नाम या स्तर भी बताए हैं। व्रत, जिसका अर्थ है संयम अनुशासन, फिर है तप, यानी अपने कुसंस्कारों से संघर्ष करना, शालीनता का अभ्यास करना।
ठीक है।
और फिर आता है कल्प, यानी पूर्ण रूपांतरण, कायापलट।
तो व्रत, तप और कल्प।
जी, और उद्बोधन में ये संकेत भी है कि इस स्तर की साधना के लिए, मतलब कल्प साधना के लिए, सांसारिक चिंताओं से थोड़ा मुक्त होना
कटना पड़ता है।
हाँ, कुछ हद तक कटना और पूरी तरह साधना में जुटना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो आत्मिक जीवन की गुत्थियां है ना, इन्हें सुलझाने के लिए एक नया नजरिया और एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए होती है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या समझें? कल्प साधना का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? कायाकल्प।
जी, और जब ये तीनों व्रत, तप और कल्प मिलते हैं, तो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बन जाती है।
त्रिवेणी संगम।
हाँ, एक तरह का संगम। और इस संगम में स्नान करने वाले, मतलब इस साधना को अपनाने वाले, वो यहीं इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद लेते हैं, जीवन मुक्त बनते हैं।
जीवन मुक्त।
हाँ, और मनुष्य रूप में देवता कहलाते हैं।
मनुष्य रूप में देवता, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है।
बहुत ऊंची। और ये सब सुनते हुए एक विचार मेरे मन में आ रहा है।
हाँ, बताइए।
देखिए, उद्बोधन में तो पूर्ण साधना के लिए कहा गया है कि सांसारिक उलझनों से पूरी तरह कटना आवश्यक है।
ये बात तो है।
लेकिन क्या आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है हमारी, इसमें हम इस साधना के छोटे छोटे तत्वों को भी अपनाए तो?
जैसे?
जैसे सचेत होकर भोजन करना, क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देना, या फिर दिन में बस कुछ पल शांति से अकेले बैठकर किसी अच्छे विचार पर सोचना।
हाँ, ये तो शायद किया जा सकता है।
तो क्या ऐसे छोटे कदम उठाने से भी हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, भले ही हम पूरी कल्प साधना उस रूप में न कर पाए जैसा वर्णन है?
ये सोचने वाली बात है, शायद छोटे कदम भी मायने रखते हों।
हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। ओम शांति।